أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد ہماری گفتگو آثار شہید مرتضیٰ مطہری میں شہید کی کتاب سیری در سیرہ نبوی کے عنوان سے ہے. اسی کتاب کا خلاصہ اور اس کے اہم مطالب پیش کیے جا رہے ہیں اور یہ دوسری گفتگو ہے. یہاں پر شہید مرتضیٰ مطہری نے ایک تمثیل بیان کی ہے اور ہم بھی چاہیں گے کہ اس تمثیل کو ذرا واضح کر کے بیان کیا جائے اور اس سے جو مطلب ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے. شہید بیان فرماتے ہیں کہ جہان طبیعت کا ہر حادثہ ایک موج کی مانند ہے. اس جہان کو ایک سمندر سے تشبیہ دیتے ہیں اور اس کے حوادث کو امواج سے. اب آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ موج, یہ سمندر, امواج کا آپس میں ٹکرانا, موج امواج کا نابود ہو جانا, دوسری امواج کو نابود کر دینا, یہ کیسے ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر جب بھی کوئی جنبش آتی ہے, چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو, تو اپنے ارد گرد ایک تحول ایجاد کرتی ہے, ایک تبدیلی لے کر آتی ہے, وہ ایک موج بنتی ہے, ایک حرکت ایجاد ہوتی ہے اور یہ موج پھیلنا شروع ہوتی ہے, دائرے میں وسعت آتی چلی جاتی ہے. امواج کی یہ ذاتی خصوصیت ہے کہ جب موج ایجاد ہوتی ہے تو یہ خود سے پھیلنا شروع کر دیتی ہے, مرکز سے فاصلہ بڑھتا جاتا ہے, دائرے میں وسعت آتی جاتی ہے. اور جون جون مرکز سے فاصلہ بڑھتا ہے امواج کا, تو ان موجوں کی قوت اور شدت میں کمی آ جاتی ہے. بالآخر یہ شدت اور یہ قوت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ نابودی کے دہانے پر جا کھڑی ہوتی ہے اور یہ موج اپنی موت آپ مر جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایک اور طریقے سے بھی موج نابود ہو جاتی ہے کہ جب ایک بڑی موج زیادہ قوت کے ساتھ, زیادہ شدت کے ساتھ آ کر اس سے ٹکراتی ہے تو یا وہ اس کو بھی اپنے دامن میں لے لیتی ہے یا اس کو نابود کر کے گزر جاتی ہے. پہلی موت کہ جو اپنی قوت کے تدریجی اختتام کے ذریعے سے اور قوت کے تدریجی طور پر کم ہو جانے کی وجہ سے واقع ہوتی ہے, اس کو طبیعی موت کہا جاتا ہے. لیکن جب دوسری امواج کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت میں ایک موج نابود ہو جاتی ہے اور دوسری اس پر غالب آ جاتی ہے, اس نابودی کو اخترامی موت کا نام دیا گیا ہے. اب آئیے اس کی شباہت ہماری بات کے ساتھ کیا ہے, اس طرف آتے ہیں. شہید فرماتے ہیں کہ انسانی معاشرہ سمندر کی مانند ہے اور چھوٹے بڑے حوادث جو اس میں پیش آتے ہیں وہ امواج ہیں. یہ موجیں مختلف قوتوں کی حامل ہوتی ہیں, مختلف شدتوں کی حامل ہوتی ہیں. بعض امواج تھوڑا فاصلہ طے کر کے نابود ہو جاتی ہیں, بعض میں قوت ذرا زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ دور تک زیادہ بڑا دائرہ بنا لیتی ہیں اور بالآخر نابود ہو جاتی ہیں. بعض امواج سے بڑی موجیں آ کر ان کو نابود کر دیتی ہیں. اور علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ, دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی. تو معاشرے کے مختلف حوادث تکامل کا راستہ طے کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں اور بالآخر نابود ہو جاتے ہیں. لیکن بعض امواج اس معاشرے کے, اس دنیا کے سمندر کے اندر ہمیں ایسی دکھائی دیتی ہیں کہ جب یہ جنبش ایجاد ہوتی ہے اور یہ موج پیدا ہوتی ہے اور یہ اپنے ارتقاء اور تکامل کا سفر طے کرتی ہے تو یہ آگے ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. نہ صرف کہ اس کا مرکز سے فاصلہ بڑھ جانے کی وجہ سے اس کی قوت اور شدت میں کمی نہیں آتی بلکہ قوت اور شدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے और रास्ते में आने वाली अमवाज या खुद ही नाबूद हो जाती हैं, या अगर मुकावेमत की कोशिश भी करती हैं तो ये अपने दामन में उनको लेके और आगे निकल जाती हैं। उनके असरात बाकी नहीं रहते दीगर अमवाज के। इन अमवाज को शहीद कहते हैं, ये जिंदा मौजें हैं। ये अमवाज ऐसी अमवाज हैं कि जिनके अंदर जिंदगी पाई जाती है, कि जूं जूं दूर होती जाती हैं, जूं जूं फैलती जाती हैं, इनकी ताकत में इजाफा होता चला जाता है। ये हैं दीनी अमवाज। इनके अंदर जिंदगी का राज पोशीदा है, जिसकी वजह से ये जिंदा मौजें कहलाती हैं। अब आइए इस्लाम की तरफ। इस्लाम का आगाज आपने देखा कि एक चार दीवारी के अंदर से इस्लाम का आगाज हो रहा है, लेकिन ये मौज देखते ही देखते एक सदी से कम अरसे में, आधी सदी के लगभग के अरसे में, या इससे कुछ ज्यादा या कुछ कम, पूरी मुतमद्दिन दुनिया को अपने दामन में ले लेती है। पूरी दुनिया हैरान होती है कि ये क्या हादसा पेश आया, क्या वाकया पेश आया कि इतनी सुरअत से ये फैलता गया कि पूरी मुतमद्दिन दुनिया इसकी लपेट में आ गई। कुरान मजीद इस इस्लामी तहरीक की खसूसियत को तशबीह देता है। एक बीज के फूटने से और पौधे की नशो नुमा से खुदावंद ने मुताल फरमाता है खेती की मिसाल देकर कि ये खेती इब्तिदा में नाजुक सब्जे की मानंद होती है। वो नाजुक सब्जा अपने तने पर खड़ा होता है आहिस्ता आहिस्ता, देखते ही देखते ये खेती खुदावंद ने मुताल की दी हुई कुव्वत से तेजी के साथ रुश्त करते हुए सब्ज व खुर्रम हो जाती है, और किसान उसको देखकर हैरान होते हैं, काफिर उसको देखकर खशमगीन हो जाते हैं। ये तशबीह इस्लामी तहरीक के बारे में है कि इस्लामी तहरीक ने इस तरह से रुश्त किया है कि देखते ही देखते ऐसी सरसब्ज हुई कि जिनके हाथों के लगाए हुए ये सब कुछ थे, ये मारिफतें, उनके दिलों को तो ठंडक मिलती है लेकिन काफिर खशमगीन होते हैं। तारीख गवाह है, जमाना जूं जूं गुजरता गया, इस मौज के मद्द मुकाबिल कभी हम देखते हैं कि जमाने जाहिलियत के मुतासिब लोग खड़े दिखाई देते हैं, कभी इस मौज और इस तहरीक के मद्दे मुकाबिल कबीले आकर खड़े हो जाते हैं, कभी इसी मौज इसी तहरीक के मद्दे मुकाबिल सियासी सकाफती अमवाज आती हैं जो इससे टकराने की कोशिश करती हैं, लेकिन या इसमें ढल जाती हैं या नाबूद हो जाती हैं। इससे ज्यादा अगले मरहले में कि जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की लेकिन मुकाबला नहीं कर सकी, वो फलसफी और सकाफती तहरीकें हैं जो इन दीनी अमवाज के मुकाबले में आती हैं और इनका सामना करती हैं। न सिर्फ इस्लाम ने इन अमवाज से टकराव की सूरत में नुकसान नहीं उठाया, बल्कि इसके बरअक्स खुद कई अजीम सकाफती तहरीकों को जन्म दिया है इस्लाम ने। यह है इस्लामी मौज की खसूसियत, यह है इस्लामी तहरीक की खसूसियत। आज जहां अकायद की बात होती है, जहां आइडियालॉजीज की बात होती है, तो इस जंग के अंदर आइडियालॉजीज की जंग कहते हैं ना वो लोग, तो इस आइडियालॉजीज और अकायद की जंग के अंदर उन बड़े बड़े मकातिब का एक सरसख्त रकीब शुमार होता है इस्लाम। ये इस चीज का खुला सबूत है कि जमाना गुजरने के साथ साथ न सिर्फ इस मौज में कमी नहीं आई बल्कि इसकी शिद्दत में इजाफा हुआ है, और बड़ी बड़ी मद्द मुकाबिल आने वाली अमवाज से अभी तक टकरा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, फतह से फतह करता चला जा रहा है मयादीन को। सवाल, इस्लाम की इस मजबूती और इस्तेकामत का राज क्या है? इस्लाम के इस फैलाव, इस्लाम की इस पेशरफ्त का राज क्या है? दो चीजें शहीद यहां बयान फरमाते हैं। एक चीज अकल है कि इस्लाम ने दीन के असासी अरकान जहां पर गिनवाए हैं उनमें से एक रुकन अकल को करार दिया है। मारिफत के जराए में से एक अक्ल को करार दिया है। इस्लाम ने ना इफराद का रास्ता अपनाया है ना तफरीद का रास्ता अपनाया है, बल्कि सब चीज़ों को अपने एतदाल पर रखा है और अक्ल को एक बेहतरीन जगह दी है अपने इस मारिफ के इस सिस्टम के अंदर, शनाख्त के सिस्टम के अंदर। दूसरी चीज़ जो इस्लाम की खास खसूसियत है, जिसकी वजह से इस्लाम किसी के रोकने से रुक नहीं पाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, वो है कि इस्लाम की निगाह इंसान के बारे में, इंसान के आगाज़ के बारे में, इंसान के इख्तिताम के बारे में, वो निगाह है कि जो इस्लाम के बहुत से दुश्मनों की नहीं है। इंसान की तबीई मौत को इंसान का इख्तिताम समझते हैं। इस बुनियाद पर कवानीन भी बनाए जाते हैं, इस बुनियाद पर निज़ामात भी बनाए जाते हैं, इस बुनियाद पर मुआशरे को चलाया भी जाता है। जबकि इस्लाम ने जो निगाह पेश की है वो है कि दुनिया और आखरत दोनों इकट्ठी हैं। इस्लाम दोनों की तरफ निगाह करता है, दोनों के मजमूए को साथ लेकर चलता है, एक जामे सिस्टम देता है कि जो बशर के पास नहीं है। सिर्फ मादी पहलू को देखता है बशर, मौत से पहले तक के पहलू को, इसीलिए बहुत सी चीज़ों का अभी तक जवाब ही नहीं है उन लोगों के पास, जबकि इस्लाम ने राय हल बयान किए हैं। इस्लाम सिस्टम देता है, निज़ाम देता है और काबिले कबूल है, और इंसानी अक्ल के सामने जो अक्ल मुगरिज ना हो, जब इस्लाम का ये निज़ाम पेश किया जाता है तो ये फिर अपनी जगह खुद बना लेता है और उसको अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देता है। ये इस्लाम की दो बुनियादी खसूसियत, एक अक्ल और एक दुनिया और आखरत दोनों को मद्देनजर रखना। इस तकामुल के प्रोग्राम के अंदर जो तीसरी खसूसियत है कि इस्लाम ने ये जो सिस्टम दिया है तकामुल का, इसके साथ साथ, इस सिस्टम के साथ साथ शाइस्ता और लायक रहबर भी अदा किए हैं अंबिया की सूरत में और उन अंबिया के वारिसीन की सूरत में। तो ये एक तीसरी ऐसी खसूसियत है कि इनका मजमुआ और दीगर बहुत सी खसूसियात इस्लाम को वो ताकत बख्शती हैं कि इस्लाम की मौज किसी के रोकने से रुक नहीं रही है और आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। इस्लाम ऐसी ज़िंदा मौज है कि दुनिया की सकाफतों को इसने अपने अंदर जज्ब किया है, नया रंग दिया है, तवाना अकलों को अपने आगे झुकने पर मजबूर किया है इस्लाम ने। और यही वजह है कि मुसलसल रुश्त और नमूव का ये सफ़र तय करता चला जा रहा है इस्लाम, और इंशाअल्लाह ये इस्लाम और ये निज़ाम पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहेगा और पूरी बशरियत का हाथ थाम कर निजात की दहलीज तक लेकर जाएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम।